एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ग्रंथसार में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम बात कर रहे हैं जासूसी उपन्यासों के एक बहुत बड़े नाम जॉन ले कैरे की, और खास तौर पर उनके आखिरी उपन्यास सिल्वर व्यू की।
बिल्कुल, जॉन ले कैरे, जिनका असली नाम डेविड कॉर्नवेल था, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे।
हाँ, वो तो खुद उस दुनिया का हिस्सा थे। MI5, MI6, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों में उनका अनुभव था,
और वही अनुभव, वही यथार्थवाद उनके लेखन में झलकता है। मतलब वो कसैलापन, वो नैतिक दुविधाएं।
सही कहा, द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड हो या टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई, ये सिर्फ जासूसी कहानियां नहीं है, ये तो इंसानी रूह पर राजों के बोझ का अध्ययन है।
गहरा मनोवैज्ञानिक चित्रण।
हाँ, और एक बात साफ कर दें, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेखक जॉन ले कैरे हैं, टोबी जोन्स नहीं।
हाँ, टोबी जोन्स तो बेहतरीन अभिनेता हैं जिन्होंने टिंकर टेलर में काम किया था।
बिल्कुल, तो सिल्वर व्यू, ये 2021 में उनके निधन के बाद छपा, उनके बेटे निक कॉर्नवेल ने इसे एडिट किया,
और ये एक तरह से उनके पूरे करियर का निचोड़ जैसा लगता है ना?
हाँ, वही सारे विषय इसमें है, अतीत का साया, वफादारी की वो धुंधली सी रेखाएं,
और वो सीक्रेट दुनिया, वो खुफिया तंत्र जो इंसान को धीरे धीरे कैसे बदल देता है या खत्म कर देता है।
तो आज हम इसी उपन्यास की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, कहानी, किरदार, उनके एहसास और वो गहरे सवाल जो ये उपन्यास उठाता है।
चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है पूर्वी एंग्लिया, इंग्लैंड का एक कह सकते हैं हवादार, थोड़ा वीरान सा समुद्र तटीय कस्बा।
बिल्कुल शांत सी जगह, जासूसी कहानियों वाली चकाचौंध से दूर।
हाँ, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है जूलियन लॉन्सले से, कोई 30 साल का नौजवान
जिसने लंदन की वो बड़ी फिनेंस वाली नौकरी छोड़ दी है।
बिल्कुल, वो आत्मा ही नौकरी छोड़कर यहाँ एक छोटी सी अपनी किताबों की दुकान खोलने आया है।
एक आदर्शवादी लगता है, शायद सुकून की तलाश में।
हाँ, किताबों की दुनिया में पनाह ढूंढ रहा है, एक बाहरी व्यक्ति है वो उस कस्बे के लिए।
ये सेटिंग चुनना भी ले कैरे का अंदाज है ना, ऐसी अलग थलग जगहें जहां सन्नाटा गहरा हो,
जहां राज पनप सकें।
हाँ, और जूलियन का किरदार पाठक के लिए एक खिड़की जैसा है, हम उसकी आंखों से कहानी में दाखिल होते हैं, उसकी वो सादगी,
और उसे अंदाजा भी नहीं कि आगे क्या होने वाला है।
बिल्कुल बेखबर। और फिर एंट्री होती है एडवर्ड एवॉन की।
एडवर्ड एवॉन एक उम्रदराज, बेहद पढ़े लिखे, करिश्माई, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी।
पोलिश प्रवासी हैं वो।
हाँ, और कस्बे के किनारे एक बड़े से घर सिल्वर व्यू में रहते हैं। पहली नजर में तो किसी रिटायर्ड एकेडमिक जैसे लगते हैं,
बहुत सुसंस्कृत,
और वो जूलियन की दुकान में गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं कि दुकान में एक खास सेक्शन बनाते हैं, साहित्य गणराज्य,
रिपब्लिक ऑफ लेटर्स।
जूलियन को तो उनमें जैसे कोई मेंटोर मिल गया हो।
हाँ, एक दोस्त, एक संरक्षक, कोई जो उसकी किताबों वाली दुनिया को समझता है।
एक दोस्ती पनपती हुई सी लगती है,
लेकिन यही ले कैरे का हुनर है, साधारण सी मुलाकातों के नीचे गहरे राज छिपे होते हैं।
बिल्कुल,
एडवर्ड का ये आकर्षण जूलियन के लिए अच्छा तो है, पर ये एक जाल भी है
जिसका एहसास उसे बहुत बाद में होगा।
ये दोस्ती और इस्तेमाल के बीच की महीन रेखा, ले कैरे की खासियत।
लेकिन कहानी सिर्फ इस कस्बे तक ही सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल, इसके साथ साथ लंदन में भी कुछ चल रहा है, सर्विस के हेडक्वार्टर्स में,
यानी ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस,
वहाँ एक अलग तनाव है।
और यहाँ हम मिलते हैं स्टुअर्ट प्रॉक्टर से।
प्रॉक्टर सर्विस के घरेलू विभाग के एक बड़े अफसर, समझिए सर्विस की अपनी इंटरनल पुलिस,
और उन्हें एक पुराने लेकिन बहुत ही सेंसिटिव सुरक्षा लीक की जाँच सौंपी गई है।
हाँ, और ये लीक कोई मामूली लीक नहीं है, ये आजकल के ऑपरेशंस के बारे में नहीं है, नहीं, ये अतीत से जुड़ा है, बोस्निया युद्ध के दौरान हुए किसी ऑपरेशन से,
कोई ऐसा ऑपरेशन जो नैतिक रूप से शायद बहुत संदिग्ध था, शर्मनाक भी हो सकता है।
प्रॉक्टर का काम है इस पुराने जिन को बोतल में बंद करना, इससे पहले कि सर्विस की इज्जत पर दाग लगे।
प्रॉक्टर का किरदार भी दिलचस्प है, कुछ लोग उसे जॉर्ज स्माइली का वारिस कहते हैं।
हाँ, पर शायद उसमें स्माइली वाली वो नैतिक कश्मकश कम है, वो ज्यादा सिस्टम का आदमी है।
बिल्कुल, एक वफादार नौकरशाह, थका हुआ दुनियादार, उसका पहला मकसद इस सिस्टम को बचाना, संस्था को बचाना,
चाहे सच को दबाना ही क्यों ना पड़े, वो विलेन नहीं है पर उस ठंडी मशीनरी का हिस्सा जरूर है।
और प्रॉक्टर की जांच धीरे धीरे जैसे मकड़ी जाला बुनती है, उसी समुद्र तटीय कस्बे तक पहुंचती है।
और जाले के केंद्र में कौन है?
एडवर्ड एवॉन और उनकी गंभीर रूप से बीमार पत्नी डेबोरा।
डेबोरा इवॉन, जो शारीरिक रूप से ज्यादातर कहानी से बाहर है पर असल में वही कहानी का दिल है।
हाँ, उसकी नैतिक धुरी, पता चलता है कि वो खुद कभी सर्विस में बहुत ऊंचे पद पर थीं। एक शानदार जासूस।
यही कहानी पलटती है, डेबोरा की बीमारी। वो सिर्फ जिस्मानी नहीं लगती।
नहीं, वो उस नैतिक थकान, उस मोहभंग का प्रतीक है जो उसने सर्विस में महसूस किया।
और एडवर्ड का वो विद्वान वाला रूप, वो बस एक नकाब है।
बिल्कुल, उसकी असलियत, उसकी प्रेरणा सब डेबोरा से जुड़ी है। उसका बार बार ये कहना कि पत्नी की देखभाल करनी है, वो गायब होना,
वो दरअसल डेबोरा की आखिरी इच्छा पूरी करने की तैयारी है।
डेबोरा मरते हुए अपने अतीत का हिसाब करना चाहती है। वो बोस्तियां वाले ऑपरेशन के राज खोलना चाहती है,
जिसने सर्विस पर से उसका भरोसा तोड़ दिया था।
और एडवर्ड का मिशन, वो किसी विचारधारा या पैसे से नहीं चल रहा, वो चल रहा है डेबोरा के प्रति उसके प्यार और वादे से।
उसकी वफादारी अब देश या सर्विस के लिए नहीं, सिर्फ डेबोरा के लिए है।
ये एक निजी लड़ाई है, प्रेम की लड़ाई, जो राष्ट्र और संस्था के दावों के सामने है।
और यही उपन्यास का असली संघर्ष उभरता है। ये एक्शन वाला संघर्ष नहीं है।
नहीं, ये याददाश्त का, मकसद का, जमीर का संघर्ष है।
और सवाल वही, गद्दारी क्या है? एवॉन दंपति क्या गद्दार है,
या वो सच और अपने जमीर के प्रति कोई ऊंची वफादारी निभा रहे हैं?
और प्रॉक्टर की वफादारी, संस्था के प्रति उसकी निष्ठा, क्या वो ड्यूटी है या नैतिक कायरता?
ले कह रहे, हमें कोई आसान जवाब नहीं देते, बस इस धुंधलके में छोड़ देते हैं।
डेबोरा का किरदार इस संघर्ष के केंद्र में है। उसका लीक करने का फैसला बदला नहीं है।
नहीं, वो एक तरह का प्रायश्चित है। वो उस ऑपरेशन का हिस्सा थी, शायद बोस्निया में युद्ध अपराधियों से कोई समझौता, जिसने उसे तोड़ दिया।
और सिल्वर व्यू, उनके घर का नाम, शायद वो इस अंतिम साफ नजरिए का प्रतीक है जो उसे अब मिला है।
और फिर तनाव बढ़ता है जब प्रॉक्टर की टीम को पता चलता है कि जूलियन की दुकान ही एडवर्ड का कॉन्टैक्ट पॉइंट है,
बाहरी दुनिया से संपर्क का जरिया।
हाँ, और जूलियन, जो बेचारा अब तक एडवर्ड को एक भला दोस्त समझ रहा था,
वो अचानक खुद को एक खतरनाक खेल के बीच में पाता है। उस पे नजर रखी जाने लगती है
और उसे पता भी नहीं।
और फिर आता है वो क्षण, जूलियन का मोहभंग, जब प्रॉक्टर की टीम उससे बात करती है, बहुत नरमी से, बहुत शालीनता से,
मगर असल में वो पूछताछ होती है।
हाँ, और एक शांत सी बातचीत में जूलियन का पूरा आदर्शवाद, उसका भोलापन सब टूट जाता है।
उसे एडवर्ड की सच्चाई पता चलती है, पता चलता है कि उसका इस्तेमाल हुआ,
वो अनजाने में एक मोहरा बन गया।
ये उसके लिए एक सदमा है, उसकी वो किताबों वाली शांत दुनिया हमेशा के लिए दागदार हो जाती है।
उपन्यास का क्लाइमैक्स भी लेकर रे के अंदाज में है।
कोई धमाका नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक खामोश मगर दिल कंपा देने वाला अंत।
जब प्रॉक्टर की टीम सिल्वर व्यू पहुंचती है,
तब तक देर हो चुकी होती है, डेबोरा की मौत हो चुकी है।
और एडवर्ड,
डेबोरा से किया वादा निभाने के बाद पकड़े जाने की बेइज्जती से बचने के लिए वो अपनी जान दे देता है,
लेकिन वो पीछे एक पूरा कबूलनामा छोड़ जाता है। हाँ, उन सारे राजों का कच्चा चिट्ठा जिन्हें सर्विस दबाना चाहती थी, ये उसकी आखिरी चाल थी।
मगर नतीजा, प्रॉक्टर सिस्टम का वफादार सिपाही कहानी को दबा देता है,
संस्था बच जाती है, कोई स्कैंडल नहीं होता, सब पहले जैसा,
सिवाय जूलियन के, वो टूट चुका है,
उसकी सादगी छीन गई है, उसके पास अब बस किताबें हैं, कड़वी यादें हैं, और एक कहानी का बोझ जिसे वो कह नहीं सकता।
उपन्यास एक उदासी के साथ खत्म होता है, कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, बस सिस्टम की वो ठंडी गूंज रह जाती है।
ये लेकर एक दुनिया का कड़वा सच है, व्यक्ति अक्सर सिस्टम के सामने बेबस होता है।
चलिए अब जरा इसके मुख्य विषयों पर बात करें। सबसे पहले तो वही लेकरे का पसंदीदा मुद्दा, वफादारी और विश्वासघात।
हाँ, ये पहली, इवॉन दंपति गद्दार हैं या नायक?
क्या सच के प्रति उनकी वफादारी देशद्रोह है? और प्रॉक्टर की संस्था के प्रति निष्ठा, वो जिम्मेदारी है या आंखें बंद कर लेना?
एडवर्ड का वो ख्याल बहुत कुछ कहता है, जिसका सार था, मेरा मुल्क, मेरी वफादारी, सब डबोरा है।
कैसे निजी रिश्ते, निजी वादे कभी कभी बड़ी चीजों पर भारी पड़ जाते हैं।
उसके लिए प्यार ही अंतिम सच था।
दूसरा अहम मुद्दा है जासूसी की दुनिया की इंसानी कीमत, डेबोरा का शारीरिक क्षय, जैसे उस नैतिक क्षय का आईना हो
जो उसने सर्विस में देखा और महसूस किया।
राज कैसे रिश्तों में जहर घोलते हैं, इंसान को तन्हा कर देते हैं।
और जूलियन की कहानी, वो दिखाती है कि इस दुनिया की एक झलक भी आम इंसान की रूह पर कैसे निशान छोड़ सकती है।
बिल्कुल, वो तो बस किनारे खड़ा था, फिर भी लहरों ने उसे भिगो दिया, उसकी मासूमियत हमेशा के लिए चली गई।
तीसरा विषय जो ले कह रहे के यहाँ हमेशा मिलता है, अतीत कभी मरता नहीं।
हाँ, ये पूरी कहानी इतिहास से हिसाब चुकता करने की कोशिश है। बोस्निया में जो हुआ उसका असर आज भी है।
ये दिखाता है कि सच और इंसाफ की प्यास को दबाड़ा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता,
वो सुलगती रहती है।
और चौथा, व्यवस्था यानी एस्टैब्लिशमेंट पर टिप्पणी। सर्विस को एक बूढ़ी थकी हुई संस्था की तरह दिखाया गया है, जिसे अपनी नैतिकता से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र है।
ये राजों की भूल भुलैया है, जहां सच को दफनाना गुनाह करने से ज्यादा जरूरी है।
प्रॉक्टर का नजरिया इसी ठंडे तर्क को दिखाता है, है ना? जैसे वो सोचता है, हमारा काम इतिहास सुधारना नहीं, संस्था को आज बचाना है।
सच तो एक महंगी चीज है, जिसे हम हमेशा बर्दाश्त नहीं कर सकते।
हाँ, और इवान दंपति की वो कड़वाहट भी उभरती है कि हमने इंग्लैंड के ख्याल की सेवा की, पर असल मुल्क तो कुछ और ही निकला।
खुदगर्ज, बेईमान, रूह से खाली, ये उनका गहरा मोहभंग है,
जिसने उन्हें इस आखिरी कदम के लिए उकसाया।
और आखिर में अर्थ की तलाश। जूलियन किताबों में अर्थ ढूंढना चाहता है।
इवान दंपति अपनी आखिरी गवाही के जरिए अपने जीवन को एक मकसद देना चाहते हैं।
और त्रासदी ये है कि ये तलाश एक ऐसी दुनिया में हो रही है जो शायद उदासीन है, बहरी है।
बिल्कुल। उपन्यास की बुनावट पर भी थोड़ी बात हो जाए, वो दोहरी कथा संरचना।
हाँ, कमाल की है। एक तरफ जूलियन का सीमित नजरिया, दूसरी तरफ प्रॉक्टर का लगभग सब कुछ जानने वाला अंदाज।
इससे एक ड्रामेटिक टेंशन बनता है। पाठक अक्सर जूलियन से पहले ही खतरा भांप लेता है,
और लेकेरे को धीरे धीरे पत्ते खोलने का मौका मिलता है। रहस्य एक्शन से नहीं, इन दो दुनियाओं के टकराव से गहराता है।
और वो माहौल, वो उदास समुद्र तटीय कस्बा, वो सिल्वर व्यू का अलग थलग घर,
ये सब किरदारों के अकेलेपन, उनके छिपे दुखों का अक्स लगता है।
जूलियन की किताबों की दुकान वो साहित्य गणराज्य जैसे सच्चाई का एक छोटा सा द्वीप जो झूठ के समंदर से घिरा है,
और सिल्वरव्यू घर वो पनाह भी है और कैद भी, जहां अतीत का सामना हो रहा है।
सही कहा। और प्रतीकवाद भी है, किताबों की दुकान बनाम गुप्त दुनिया। सिल्वरव्यू का नाम क्या वो जीवन के अंत में मिलने वाली साफ दृष्टि है?
और लेकरे के संवाद, हमेशा की तरह कम शब्दों में बहुत कुछ।
सतह के नीचे मतलब की कई परतें किरदारों के बीच की खामोशी भी बोलती है।
वाकई, ये सब मिलकर एक अजीब सी उदासी पैदा करते हैं जो पढ़ने के बाद भी रहती है।
हाँ, किरदारों की बेबसी महसूस होती है। कोई आसान हीरो या विलन नहीं, सब अपनी अपनी मजबूरियों में फंसे हैं।
उपन्यास का जो भावनात्मक असर है वो गहरी उदासी का है। यहाँ कोई जीतता नहीं है।
एबिकॉन दंपति नैतिक रूप से शायद जीतते हैं, पर कीमत जान देकर चुकाते हैं, और उनका सच दब जाता है।
जूलियन बच जाता है, पर उसकी रूह पर घाव रह जाता है। प्रॉक्टर अपना काम करता है, पर वो खोखली जीत है।
एक बेचैनी रह जाती है, ये सवाल कि क्या सिस्टम के सामने व्यक्ति का विद्रोह हमेशा बेकार होता है,
क्या जमीर की आवाज हमेशा दब जाती है।
और यही शायद लेक्यारे का स्थायी संदेश है। देशभक्ति क्या है, चुप रहने की कीमत क्या है?
असली खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपनी ही संस्थाओं के अंदर पनप रहे नैतिक क्षय, पाखंड से है।
सिल्वरव्यू जमीर की उन खामोश अनदेखी लड़ाइयों की कहानी है।
जॉन लेकारे के आखिरी उपन्यास के तौर पर सिल्वरव्यू उनके असाधारण सफर का एक बहुत ही मौजूं और मार्मिक अंत है।
ये दिखाता है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी उनकी नजर और उनकी समझ उतनी ही पैनी थी, उनके सवाल उतने ही जरूरी थे।
और ये हमें प्रेम, वफादारी और सच के अकेले बोझ पर सोचने को मजबूर करता है।
हाँ, और ये पूछता है कि हम अपनी सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या वो कीमत कभी बहुत ज्यादा हो सकती है?
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।